चरणों में नमोस्तु के साथ गर्वत प्रार्थना करता हूं। आज के पावन प्रसन्न उत्सव चार क्षण पर अपने मंगल में सार्वजनिक आध्यात्मिक प्रवचन से हम सबको प्रकाश करें। परम पूज्य एक बार समाचार करती मंगल
मैं तो आपसे सीधा सीधा उपाय पूछने आया था कि क्या उपाय है, आप उल्टा मुझे जो है ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। मैं संसार जानने आया हूं, आप मुझे संसार के बारे में बताइए। तो साधु ने कहा वो तो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता पाऊंगा, अगर करना चाहो तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, कर ही लेते हैं। कहीं का ध्यान करना है तो एक भैंस का ध्यान करना, तब तो और मुश्किल होगी। क्यों भाई, कोई अच्छी चीज का ध्यान बताते तो भी एक बात ठीक था, भगवान भगवान का ध्यान करना होता तो भी ठीक था, आप कह रहे हैं कि भैंस का ध्यान करो और ऐसा विचार करो कि तुम भैंस हो गए। तो उसने कहा ठीक है, अब कर। तो जाकर के वो एक कमरे के अंदर, गुफा के अंदर बैठ गए और जैसा साधु ने कहा था कि तुम निरंतर इस बात का विचार करना कि मैं भैंस हो गया, उसने ध्यान शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरा दिन भी गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन जो है, साधु तो इंतजार ही कर रहा था कि आवाज आनी चाहिए, और तीसरे दिन बहुत तेज आवाज आई कि बचाओ। लेकिन वो बचाओ वाली आवाज जो है वो मनुष्य जैसी तो थी, पर थोड़ा थोड़ा जैसे भैंस बोलती है वैसी वैसी थी। भागा भागा क्यों वो साधु, देखो तो युवक बैठा हुआ है ध्यान में और आवाज दे रहा है कि बचाओ। तो साधु ने कहा कि हुआ क्या, निकल आओ बाहर। उसने कहा कैसी अजीब बात करते हैं, दोनों इतने बड़े बड़े सिंह हैं, फंस रहे हैं ऊपर, अब थोड़ा मदद करिएगा आप, ऐसे कैसे निकल आओ मैं। तो साधु ने उसको हिलाया, जगाया, उसका ध्यान तोड़ा और कहा बुद्धू है कहां तेरे सिंह, निकलो झट से बाहर। वो बाहर निकल आया, साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जैसे तीन दिन तक लगातार इस बात का विचार करते करते कि मैं भैंस हो गया हूं, तुम्हें लगा कि सचमुच भैंस हो गया हूं और सिंह फंसने लगे, ऐसे ही जिंदगी भर ये विचार करते करते कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तुम्हें मन में लगा है कि मेरा है और तुम कहते हो कि मैं इससे कैसे छूटूं, तुम छूटे हुए हो, इसने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम उसे पकड़े हुए हो, तुम भूल गए। ये हमारी मूर्छा, हम कहते हैं कि हमें ये छोड़ना है, हमें ये छोड़ना है, हमने इस चीज में पकड़ रखा है, हमें कोई चीज छोड़ना होना नहीं है, ठीक है हमारी जो कि हम कहें कि हम छोड़ते हैं। जिस चीज का ग्रहण नहीं किया जा सकता उसके त्याग का अहंकार करना तो व्यर्थ ही है। जो चीज कभी हमारी हो ही नहीं सकी, हमारा भ्रम टूट जाए कि ये चीज हमारी नहीं है, उसी दिन हम उस चीज से पार हो जाएंगे। हमें लगता जरूर है कि त्याग धर्म के दिन हमें कुछ छोड़ना है, असल में हमको उन सब चीजों की ग्रिप से अपने को छुड़ा लेना है। छूट जाने का नाम त्याग है। अभी तक तो हम शायद यही कहते आए हैं कि कुछ छोड़ देने का नाम त्याग है। छोड़ देना इसका मतलब है कि ग्रहण का भाव तो है, और ग्रहण जब हम कर ही नहीं सकते हैं तब तो छोड़ने का अहंकार कैसा। बहुत आसान है कि हम चीजों से अपने को दूर कर लें, चीजें हमें परेशान नहीं करती, हम चीजों को अपना मान करके उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं और चीजों को हम कीमत देते हैं। ये हमने बहुत पहले आपसे बात कही थी कि यदि हम अपने संबंध, जो हमारे राग के संबंध हैं, जो हमारे देश के भी संबंध हैं, बड़ा मजा है, चीजों से हम देश वश भी जुड़े हुए हैं, चीजों से हम राग वश तो जुड़े ही हैं, चीजों से देश वश भी जुड़ जाते हैं। हम दोनों तरह से देखना है कि राग और देश से जो हमने संबंध निर्मित किए हैं चीजों के साथ, वो संबंध हम धीरे से हटा लें तो हम इसी का नाम कहेंगे कि त्याग है। आत्महित के साथ जिसमें लोक हित होता हो उसे कहते हैं दान, और जिसमें लोक हित की प्रायोरिटी ना हो, सिर्फ आत्महित की बात हो, उसे कहते हैं त्याग। त्याग और दान दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चला करते हैं। जिसने त्याग किया है वो अल्टीमेटली दान ही किया है, और जो दान करते हैं वो डायरेक्टली प्यास ही करता है। ये बात जरूरी है कि किसी के काम आवे या किसी के काम ना आवे। सांप कैचड़ी छोड़ देता है, ठीक इसी तरह हम रोज अपने घर में जो वेस्ट है, कचरा है, उसे बाहर फेंक देते हैं। हम किसी से कहने जाते हैं कि मैंने इतना सारा कचरा फेंका, बल्कि दबे पांव चुपचाप जाकर के बाहर आते हैं कि कोई देखने लगे इतना कचरा देखा हो, वो भी हमारे घर के सामने देख रहे हैं। उस समय हम जरा भी विचार नहीं करते हैं कि मैं इतना छोड़ता हूं, इस चीज को कहूं जो मुझे लगने लगा कि ये वेस्ट था, ये मेरा नहीं है, इससे मेरा अहित हो रहा है। ऐसा जैसे ही हमें लगने लगता है, उसी क्षण हम जैसे ही सांप को ये लगने लगता है कि ये कांच भी मेरे लिए पीड़ादायक है, जैसे ही मोर को लगने लगता है कि ये पंख मुझे पीड़ादायक है, वे छोड़ देते हैं और हमें संदेश देते हैं कि जो आत्महित में बाधक बनता हो उससे बचिएगा। इसी का नाम त्याग है। जब हम आत्महित में बाधक चीजों से बचते हैं उसको हम त्याग कहते हैं, और जब हम आत्महित के साथ साथ ध्यान रखते हैं कि दूसरे का भी हित हो गए, तब उसी को हम ध्यान दान की संज्ञा देते हैं। ये चीज मेरे काम की तो नहीं है लेकिन दूसरे के काम आ सकती, मैं इसे छोड़ू तो बेहतर यह होगा कि इसके काम के लिए दे दूं, तो मेरा तो छूट ही गया और इसके काम भी आ गया। दो काम एक सत्य हैं। पूरे महापुरुष जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे आत्महित के साथ लोक हित की कामना करके ही होते हैं। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अनंत केवल ज्ञान को पाने वाले सिद्ध भगवान हुए, लेकिन गिनती के 24 जिनको हम हमेशा याद करते हैं वे 24 हमें संदेश देके गए हैं कि आत्महित के साथ लोक हित की भावना रखना ये जैन दर्शन का मूलभूत तत्व है। ऐसा आत्महित जिसमें कि लोक हित निहित हो, उसी को हमने दान कहा है। श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों ही ऐसा करते हैं। अगर ऐसा ना करते होते तो आपके बीच अपने बंद कमरे में चुपचाप मेरे पास बहुत सारा समय है कि मैं अपने आत्मा का कल्याण करूं और किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्या चीज है जो कि बार बार ले आती है बाहर कि करो थोड़ी सी मेहनत अपने आत्मा कल्याण के लिए तो निकले हो। सो एक बार खा पी करके दरवाजा बंद करके शाम तक भी नहीं किसी से बोलो तो कोई कहने वाला नहीं कि सो रहे हो कि जाग रहे हो कि क्या कर रहे हो, बल्कि बड़े साधु माने जाओगे कि दिन भर नहीं मिलते, 10 मिनट को मिलते भैया, बड़ा भीड़ लगी और लाइन लगी रहे उस और दिन भर आगे डबिर हो जाओ तो फिर तो कोई इंपॉर्टेंस तो रहती नहीं है शायद। मेरे ख्याल से आज का समय ही ऐसा है कि जो जितना देता है वो शायद उतना ही अपने लिए मुश्किल खड़ी करता है। जब तक हम अपने आत्महित के द्वारा, अगर पेड़ जिस दिन हमें देना बंद कर दे उस दिन पेड़ पेड़ नहीं कहलाएगा, जिस दिन नदी हमें देना बंद कर दे उस दिन नदी नहीं पोखर कहलाएगी, सड़ी हुई चीज कहलाएगी, और जिस दिन गाय अपना दूध देना बंद कर दे परोपकाराय भवन्ति गावः, अगर वो परोपकार बंद कर देती है तो उसका जीवन ही नष्ट हो जाए। जिस दिन हमारा जो स्वभाव समाप्त होता है देने का भाव, उस दिन तो हम त्याग को समझ ही नहीं सकते। जब तक हम देना नहीं सीखते हैं तब तक हम त्याग नहीं कर सकते। और देना भी तीन तरह से होता भैया। त्याग की बात तो ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि देने में ही त्याग की बात निहित है। तीन तरह का दान है। एक संकलेश पूर्वक दान दिया जाता है। किस बात का संकलेश? इस बात का संकलेश कि पता नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं दे तो रहा हूं पर भाई भाई थैंक्स दिया इस तरह कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा मन में विचार आ जाता है। डोनेशन करते समय ऐसा विचार आना बहुत सहज है, कई लोगों को आता है। इसको बोलते हैं राजसिक दान। राजसिक दान है जिसमें इस प्रकार का क्लेश हो रहा है, दे तो रहा हूं पर क्लेश हो रहा है कि पता नहीं मदद तो कर रहे हैं पर बाद में मुझे रिटर्न कुछ देगा कि नहीं, थैंक्स भी कहेगा कि नहीं, चार लोगों के सामने इस बात को बाद में कहेगा कि नहीं, या कि पेपर में हाईलाइट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या कि मेरा नाम पटिया पर लिखा जाएगा कि नहीं, इसलिए क्यों ना पहले से ही लिखवा के फिर दो। ऐसा तक विचारा जाता है कि पहले हमारे सामने लिखो कि इतना इतना हमारा फिर लेना हमसे। ये दान कहलाता है, राजसिक दान कहलाता है। और दूसरा दान होता तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है कि देखा देने वाले बहुत देखे होंगे मेरे जैसा देखा क्या ये लो तुम भी क्या याद रखोगे। कोई व्यक्ति खाना खाने आया और उसको बड़े मजे से तो आपने खाने बनाया और फिर बाद में जब पूरा खा पी ले फिर कहे कि देखा क्या खिलाया कभी जिंदगी में खाया नहीं होगा पहले अब वो क्या कहेगा वो तो कुछ नहीं कहेगा लेकिन हमने जो कुछ दिया था वो हमने अपने हाथ से समाप्त कर लिया जिसमें हम तिरस्कार पूर्वक देते हैं तिरस्कार करते नहीं है बाहर पर भीतर तिरस्कार का भाव आ ही जाता है। अपने बड़े होने का ख्याल आ जाए देते समय तो ध्यान रखना ये तामसिक दान है मैं बड़ा हूं देने वाला कभी बड़ा नहीं होता। एक बार ऐसी चर्चा चल पड़ी आचार्य श्री के सानिध्य में वो पंडित जी वगैरह व्याख्या कर रहे थे कि देने वाला बड़ा होता है और देखो अच्छा देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है महाराज जी तक को जो लोग देते हैं उनका हाथ ऊंचे रहता महाराज जी का नीचे रहता। तो आचार्य श्री बहुत हाजिर जवाब है उन्होंने कहा मालूम भले तुम्हारा देने वाले का हाथ ऊपर रहे और लेने वाले का नीचे पर ये बताओ कांपता कौन है ऊपर वाला के नीचे वाला कौन बड़ा है। अगर अगर लेने वाला इनकार कर दे तो देने वाले की क्या हैसियत कि वो दे सके। देने वाला बड़ा नहीं है लेने वाला ले लेता है इसलिए देने वाला बड़ा हो जाता है। लेने वाला इनकार कर दे कि नहीं चाहिए मेरे पास है रख रहे हो अपने पास क्या कर लीजिएगा मुझे तो बहुत मुश्किल पड़ती है छोटे छोटे बच्चों को बहुत मनाना पड़ता है मेरे मेरे से एक तो छोटी सी पुस्तक दे दो और अगर वो इनकार कर दे नहीं चाहिए हमको तो कैसा लगता भीतर बहुत मुश्किल पड़ती है। आप किसी को कुछ देना चाहें आप किसी से मैंने एक बार लिखा था कि जब देने का मन हो और कोई अपना लेने वाला करीब ना हो जब हम कुछ कहना चाहें और कोई सुनने वाला करीब ना हो तब मालूम पड़ता है कि देने और सुनाने वाले से लेने और सुनने वाला ज्यादा कीमती है। लेकिन हम भूल जाते हैं और ऐसा अहंकार कर बैठते हैं कि देने वाला बड़ा है देते समय ऐसा भाव नहीं रखना। शायद आपने कभी रहीम खान खाना की बात सुनी हो और गंग कवि की बात सुनी हो गंग कवि की किसी एक बात पर खुश होकर के रहीम खान खाना जो कि अकबर के रत्न थे नौ रत्नों में से उन्होंने उनके लिए गाड़ियों में भर करके और भेजा था डोनेशन एक अकेली कविता पर। तब लोगों ने कहा कि कहां सीखे नवाब जू ऐसी देनी दैन ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों तुम नीचे मैन देते चले जाते थे और सिर झुकाते चले जाते थे। तब जाकर के गंग कवि ने दो लाइनें लिख करके भेजी थी कि दैन हार को और है भेजत है दिन रैन लोग भरम मुंह पे करें ताते नीचे मैन। हम अपने कर्मों से पाते और खोते हैं ये तो निमित्त बनता है कोई और उसी निमित्त पर अगर हम कह देते हैं कि इसने दिया या इसने छीन लिया तब तो लज्जा ही आती है। ऐसा जो विचार करके दान देता है जो अपना कर्तव्य मान करके जो अपना धर्म मान करके और जो आदर भाव से दिया जाता है वही सब सात्विक दान है। बाकी दान तो राजसिक और तामसिक हैं जो हमारे यहां पर अच्छे नहीं माने गए। और दूसरी बात एक और कि तेक्तेन भूंजीता H2O एक फॉर्मूला है इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लें। मैं आपसे त्याग की बात करूं तो आपके भोग तो छूटेंगे तो क्या रेशियो होना चाहिए कोई एक रेशियो तो होगा। जब जब भी डोनेशन की बात आती है तो डोनेशन के मायने ही है कि सम पार्ट ऑफ थिंग्स कोई एक हिस्सा सम विभाग अतिथि सम विभाग हम अपने पूरे भोग की सामग्री में से एक विभाग करेंगे एक पार्ट करेंगे वही हम डोनेट करेंगे परसेंटेज फिक्स करेंगे। ये सम विभाग क्या चीज है तो कहते हैं जैसे H2O त्याग दो भोग एक O की तरह लिखिएगा भोग को त्याग को टू कर दीजिए दो भाग छोड़िएगा एक भाग भोगिएगा। बहुत मुश्किल होगा 2% 3% 10% तक तो डोनेट करते आपने सुना होगा शायद लेकिन ये फॉर्मूला तो बहुत मुश्किल है। विनोबा ने जब उनसे पूछा कि रेशियो क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दो भाग त्याग एक भाग भोग। मैं अपने जीवन में भोग तो करूंगा, लेकिन इसलिए दो भाग रखा कि जो कुछ भी हमें मिला है आज, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है आज, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा पूर्व जन्म का कर्म तो जरूर हुआ है, वो तो चुप गया, और आगे के लिए कुछ तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो दोनों मेहनत करना पड़ेगी। पुराने वाले को संचित रखना है, आगे वाले के लिए और एक संचित करना है, दो भाग तो करना ही पड़ेगा, एक ही भोगा जा सकता है। जो दो छोड़ेंगे तब एक खोगेंगे। ये चीज अगर, ये फॉर्मूला अगर आप अपने जीवन में ध्यान रखें, तो शायद त्याग बहुत आसान होगा। जितना कठिन मालूम पड़ता है दान और त्याग, उतना ही दान और त्याग आसान भी मालूम पड़ने लगेगा। और बहुत छोटी सी घटना, शायद हमारे जीवन में ये छोटी छोटी घटनाएं हमें कोई संदेश दे जाए, इन सब चीजों से रिलेटेड बात तो उतनी ही है। हमें देना है चार प्रकार का दान, है सबको मालूम है, औषधि की जगह औषधि देना है, जहां आहार की आवश्यकता है वहां आहार देना है, जहां उपकरण की आवश्यकता है, ज्ञान शास्त्र की आवश्यकता है वो देना है। वैसे मैं कल कह चुका हूं कि बड़े से बड़ा ज्ञान है किसी की श्रद्धा को मजबूत करना, किसी के ज्ञान को अधिक बढ़ाना, किसी के आचरण को मजबूत करना, ये बड़े से बड़ा त्याग और बड़े से बड़ा दान। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का दान सबसे बड़ा दान है। ज्ञान दान के लिए ज्ञान के उपकरण देना और श्रद्धा के लिए श्रद्धा के स्थल देना, इतना नहीं है कि श्रद्धा के स्थल देना, उसकी श्रद्धा कैसे मजबूत होगी। हम तो जरा जरा सी किसी की श्रद्धा को कितनी जल्दी हम तोड़ देते हैं, किसी के विश्वास को चार बातें कहकर के हम तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, किसी के आचरण से हम उसे कितनी जल्दी भ्रष्ट कर देते हैं, कहते नहीं किसी को अगर दे सको तो अपनी श्रद्धा से दूसरे की श्रद्धा मजबूत करना, अपने ज्ञान से दूसरे का ज्ञान निर्मल करना, अपने आचरण की पवित्रता से दूसरे के आचरण को पवित्र करना, इससे बड़ा तो कोई दान नहीं होता। यह दान ही सबसे श्रेष्ठ, और पात्र और अपात्र का दान का भेद करके दान दिया जाता है, उसको लौकिक दान नहीं उसको पारमार्थिक दान देते हैं, और एक लौकिक दान भी होता है, ये बात अधूरी ना रह जाए इसलिए पूरी कर रहा हूं। एक पारमार्थिक दान है और एक लौकिक दान है, करुणा दान भी है। हमें करुणा आ गई तो हम करुणा दान दे देंगे, हम फिर विचार नहीं करेंगे कि किसे दिया किसे नहीं दिया। अगर इतना सात पीढ़ी तक का हिसाब मिलाओगे तो किसी की सात पीढ़ी का हिसाब ठीक ठीक नहीं मिलेगा। दान देने में ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं, करुणा दान देने में, पात्र दान देने में विचार की आवश्यकता है कि किसे देना किसे नहीं देना। मुझे मालूम है कि इन लोगों में से सौ लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो कि मेरे दान के योग्य है, पर मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। मैं सौ को देता हूं, 99 में व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन एक को अगर सार्थक पहुंच गया है तो मेरा दान सार्थक हो गया। वो 99 से भी ज्यादा भारी होगा। पता नहीं किसे कब किस चीज की जरूरत पड़े, जब जिस पर बीतती है वो ही जानता है। इसलिए लौकिक दान और करुणा दान में कोताही नहीं करना, और संदत्ति तो देते ही हैं। संदत्ति लिखा है महापुराण में, अपने समान कहते संधि बना लिया, अपने समान आचरण और ज्ञान वाले को अपनी बिटिया देते हैं, वो संदत्ति कहलाती। और सर्वदत्ति क्या कहलाती, सब कुछ दे दिया अपने योग पुत्र को, अपनी परंपरा और अपना धन संपदा सब कुछ दे करके मुक्त हो जाना, ये कहलाती है सर्वदत्ती कहलाती। सब कुछ दे दिया योग पुत्र को, अपने संस्कार देना। आज कौन दे रहा है संस्कार? आज हम दे रहे हैं अपना पैसा, नहीं पैसे तो देना ही, ट्रेजरी की चाबी के साथ साथ उसको एक छोटी सी पुस्तक देते हैं कि बेटे ये है हमारी जैन धर्म की क्रीम, और ये मैं तुम्हारे हाथ में, या मेरे जीवन भर का ये अनुभव मैं तुम्हें इस छोटी सी पुस्तक में, एक छोटी सी डायरी में लिख के देता हूं, और ये है चाबी, इससे संसार का ताला खुलेगा और इससे तुम्हारे परमार्थ का ताला खुलेगा। दोनों एक साथ चाबियां दे रहा हूं, अकेली एक चाबी नहीं देना कि जिससे संसार चलता है, परमार्थ की चाबी भी उसे देना, ये सर्वदत्ति कहलाती। और बिटिया को ऐसे घर में देना जहां की व्यसन ना हो। संदत्ति में ध्यान रखना कि मेरे जैसा आचरण करने वाला हो, तब उसके लिए हम कन्या दान करेंगे, ये भी दान लिखा हुआ है। ये सब लौकिक दान है, लेकिन ये दान भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अकेले परमार्थ दान को तो हम जानते हैं कि चार प्रकार का दान हमने दे दिया, उससे हमारा परमार्थ सद गया। वो कितने लोग दे पाते हैं? ये जो लौकिक दान है वो रोज हमारे जीवन में हम दे रहे हैं, और वही ठीक नहीं है तो परमार्थ का दान क्या ठीक होगा? अभी लौकिक दान भी हमारा ठीक ठीक नहीं हो पाता, इसलिए दोनों प्रकार के दान को समझने की कोशिश करके फिर उसके बाद दान के लिए प्रक्रिया करना। और दान ध्यान रखें हम कि किसी को तिरस्कार पूर्वक नहीं दें, क्लेश पूर्वक नहीं दें, अपना कर्तव्य मान करके दें, और जो कुछ भी दें उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य हो कि उससे दूसरे का भी हित हो, इतना ही पर्याप्त है। कवि रायचंद जी का एक उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था, वो आपको सुनाई देता हूँ। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, कितना कुछ करते रहिएगा जीवन में, आप स्वयं समझदार हैं। और शेष दो दिन बाकी हैं, हमने पर्यूषण भी पूरा कर लिया, हमारे 60 दिन यहां पूरे हो जाएंगे। इसके बाद और थोड़े से शेष दिन बचेंगे जिनमें हमें क्या करना है इसका विचार आप करेंगे, और हमें क्या करना है इसका विचार तो हम निरंतर ही कर रहे हैं, पर कर लीजिएगा, जिससे जितना बने वो अपने जीवन का कल्याण कर लीजिएगा। मेरे से भी अच्छे सुनाने वाले और आएंगे, मेरे पहले भी मुझसे अच्छे अच्छे लोग आए होंगे, मैं शायद उतना आपको नहीं दे पाया होऊंगा, पर फिर भी जितना हम लोगों से बनता है, जितना हमारी हैसियत है, पता नहीं आपने क्या अपेक्षा से हमें बुलाया होगा, पर हमारी जितनी हैसियत है हम उसके मुताबिक, हमारा जैसा नेचर है उसके मुताबिक हम आपको दे रहे हैं। शायद हमारे जब आप नहीं पा पाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे देने में कमी थी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप पाने के योग्य नहीं थे, पर जो पाता है वो अपनी योग्यता से पाता है। देने वाले की कृपा अगर वो महसूस करता है तो ठीक है, वरना देने वाले का तो सिर्फ कर्तव्य है। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, मैंने अभी तक अपना कर्तव्य पूरा किया, आगे भी करूंगा। आपसे क्या अपेक्षा रखूं? मुझे कोई अपेक्षा नहीं, किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं। जो अपने जीवन को जैसा बनाया है वो अपने जीवन को वैसा पाएगा। आज त्याग और दान के दिन मुझे आपसे इतना ही कहना, रायचंद के जीवन की एक घटना याद आती है, कभी अगर वैसा दान और वैसा मन बना सके तो बनाइएगा। रायचंद जी बहुत बड़े सौदागर थे, हीरे जवाहरात का सौदा करते थे। जैनी आदमी ऐसे धंधे किया करता था, हीरे जवाहरात के, सोने चांदी के, या ज्यादा होता था तो कपड़े का व्यापार करता था, मैन्युफैक्चरिंग फिर भी नहीं करता था, सिर्फ व्यापार करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि कागज लिख दिया गया, सौदा तय हो गया, एक निश्चित भाव पर हीरे जवाहरात का सौदा हो गया। और सौदा क्या हुआ? रायचंद का भाग कि जिस दाम पर सौदा किया था दूसरे से खरीदे थे, बढ़ना शुरू हो गया, भाव बढ़ना शुरू हो गया। अब जिससे उन्हें लेना थे हीरे जवाहरात, वो तो मुश्किल में पड़ गया, उसका तो घर से निकलना बाहर मुश्किल पड़ गया कि अगर इतनी कीमत पर रायचंद को मैं हीरे जवाहरात दूंगा तो मैं तो शायद अपने को बेच करके भी इतनी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। रायचंद को जब ये बात मालूम पड़ी तो मालूम अपने घर से चल करके खुश उस सौदागर के पास पहुंचे, उस व्यापारी के पास पहुंचे, तो व्यापारी समझा कि शायद रायचंद अपने हीरे जवाहरात का जो सौदा किया था वो पूरा करने के लिए आए हैं, तो हाथ जोड़ लिए कि रायचंद जी मुझ पर विश्वास करिएगा, मैं पूरा चुका दूंगा आपका, पाई पाई चुका दूंगा, मैं अपने को चौराहे पे खड़ा कर दूंगा, मैं अपनी कीमत लगा दूंगा लेकिन आपका चुका दूंगा। रायचंद ने कहा कि मैं अपना सौदा पूरा करने थोड़ी आया हूं, तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि ये जो कागज जिस पर हमने सौदा लिख दिया था, इसी कागज की वजह से ना तुम्हारे मन में तकलीफ है कि भाव बढ़ गए हैं। मैं तो तुमसे कहने आया हूं कि मैं रायचंद जैनी आदमी हूं, और फौरन जो है उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिए कि तुम्हारे मन को अगर संकोच पहुंचता है इस सौदे से तो रायचंद रायचंद दूध पीना जानता, दूसरे का खून पीना नहीं जानता। और उसी क्षण वो सारे के सारे पैसे, वो सौदा रद्द कर दिया, जिस भाव पर तुम्हें देना हो दे देना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जिसका मन इतना पवित्र हो वही दे सकता भैया, और वही त्याग कर सकता है, मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। अपने मन की पवित्रता, अपने मन की सरलता जितनी कर पाइएगा उतनी कर लीजिएगा। ज्ञान के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जब चाहे तब बैठिए जान लीजिएगा। सब जानते हैं कि क्या देना है और क्या नहीं देना है, कितना देना है, कितना हमारी शक्ति है और किस भाव से देना है। बस देते चले जाना है, एक वृक्ष की तरह देते चले जाना, एक नदी की तरह देते चले जाना, और एक गाय की तरह देते जाना दूसरे के उपकार के लिए। अपने को दिए जाना, हमारा धर्म तो कहता है कि एक दिन जाकर के भगवान के सामने अपने को भी दे देना। सबसे बड़ी से बड़ी पूजा होगी, सबसे बड़े से बड़ा दान होगा कि हमने अपने को ही किसी चरणों में, सच्चे देव गुरुशास के चरणों में समर्पित कर दिया, दे दिया कि तुम जो कहोगे वो मैं कहूंगा, तुम जो देखोगे वो मैं देखूंगा, अपने अपने आंखों से नहीं देखूंगा, अपने कानों से नहीं सुनूंगा, अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आपकी भाषा बोलूंगा, आपके जैसा देखूंगा, आपके जैसा ही सुनूंगा, ऐसा अपना जीवन जो समर्पित कर देते हैं, वे करते हैं सच्चा दान। हम क्या कर सकते हैं? सच्चा दान, ऐसा दान, ऐसा समर्पण हम भी सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में कर सके, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा त्याग होगा। ऐसे त्याग धर्म के दिन हम भावना पाते हैं कि सबका मन ऐसा ही पवित्र हो कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोले आचार्य गुरु विद्या सागर
बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की, उत्तम त्याग धर्म की। स्कूल के बच्चे अपने अध्यापक के साथ गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए गए। बॉम्बे पहुंचे, बच्चों के मन में आया कि समुद्र भी देखा जाए, तो उनके अध्यापक उन बच्चों को समुद्र दिखाने भी ले गए। बच्चों ने कहा कि गुरुजी इसमें नौका विहार भी करें, इसका भी आनंद लेना चाहेंगे। तो अध्यापक ने उन सब बच्चों को लेकर के एक नाव में बैठ गए और समुद्र में नौका विहार करने लगे। नाव थोड़ी दूर आगे बढ़ी और धीरे धीरे उस नाव में पानी भरना प्रारंभ हो गया। जब नाव डूबने को होने लगी तो गुरुजी की चिंता हुई उनको, कैसे बचा जाए। तो उन्होंने एक काम करना प्रारंभ कर दिया, नाव में जो पानी भर रहा था उसे बाहर फेंकने का काम कर दिया। उसी बीच कुछ बच्चे थे, वो बच्चे भी पानी फेंक रहे थे, एक को प्यास लगी तो उसने उस पानी को पी लिया, तो अच्छा नहीं लगा, उसने थूक दिया। जैसे तैसे किसी प्रकार से नौका किनारे पर आई, सब साकुशल आ गए, तो बच्चों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बताओ कि आप ये जो कर रहे थे ये ऐसा क्यों कर रहे थे? नाव से पानी फेंक रहे थे। और दूसरा प्रश्न है कि समुद्र का पानी इतना खारा क्यों? गुरुजी ने कहा कि
कहते हैं। और ये बुद्धिमानी का काम यही था कि पानी यदि आ रहा है तो अपना काम है कि उसे बाहर फेंकने का, उलीचने का काम है, और दोनों हाथ से उलीचने का काम किया, इसलिए हम सब सापुसल यहां किनारे तक आ गए हैं। और दूसरी बात कि समुद्र का पानी खारा क्यों है? समुद्र में अच्छी अच्छी नदियां मिल जाती हैं, उनका मीठा मीठा पानी समुद्र में चला जाता है, लेकिन फिर भी समुद्र का पानी खारा रहता है। इसके पीछे कारण, नदियां सबके लिए बहुत कुछ देती हैं, चाहे जिसके लिए देना उसके लिए तैयार है, इसलिए नदी का पानी मीठा होता है। समुद्र किसी के लिए एक बूंद देना भी पसंद नहीं करता, एकमात्र संग्रह, संग्रह की वृत्ति उसकी है, संचित करने की ही वृत्ति है, इसीलिए उसका पानी खा रहा है। ये दो बातें हैं आज के इस उत्तम त्याग धर्म की, कि इस अत्यधिक संग्रह की वृत्ति तो चल रही हो, और संग्रह की वृत्ति ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो ध्यान रखना, जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी नैया संसार सागर में डूब जाएगी। जो जितना ज्यादा से ज्यादा संग्रह करेगा, जो जितना ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके रखेगा, उसका वजन ज्यादा हो जाने से वह संसार में डूबेगा ही डूबेगा। इसीलिए नीतिकारों को लिखना पड़ा होगा कि पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे कि नाव में पानी बढ़ जाने पर और घर में पैसा बढ़ने पर बुद्धिमानी का काम तो यही है कि दोनों हाथ से उसे बाहर करना चाहिए, एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए, एक संतुलन बना करके चलना चाहिए। यदि संतुलन नहीं होगा तो जैसे नाव डूब सकती है, वैसे हमारी जीवन रूपी नैया भी डूब सकती है। और कहीं ऐसा ना हो कि एकमात्र संग्रह की वृत्ति हमारी बनी रहे, तो ध्यान रखना तुम्हारा ये धन खारा हो जाएगा, कोई उपयोग में नहीं आ सकेगा। समुद्र का पानी किसी के काम नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी ये धन वैभव, और कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वयं इस तरह खारे हो जाएं, कड़वे हो जाएं कि किसी के उपयोग तक में ना आ सके। ध्यान रखना, जब कभी भी कोई बांध बांधा जाता है, बांध बांधने के साथ ही उसमें पानी के निकलने का एक रास्ता अवश्य बनाया जाता है। बांध में बहुत सारा पानी एकत्रित किया जाता है, और यदि उसके निकलने का रास्ता ना हो तब फिर क्या होगा, बांध फट जाएगा, और बांध फटा तो त्राही त्राही मच जाएगी, लोग अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे, मृत्यु की गोद में समा जाएंगे। इस तरह के आतंक से बचने के लिए, इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए बांध बनाने के साथ ही उसमें एक दरवाजा बनाया जाता है। पानी कितना भी इकट्ठा किया जाए लेकिन उससे निकालने का भी एक क्रम होता है, वो निकल आ जाता है तभी वह बांध सुरक्षित रह सकता है। ठीक इसी तरह पानी का संचय करना इस संग्रह वृत्ति का प्रतीक है, उस बांध में पानी निकलने का द्वार त्याग का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी ऐसे त्याग का प्रतीक आना चाहिए, यदि ये नहीं आता है तो संभव नहीं है कि हमारा जीवन पवित्र बन सके, हमारे जीवन का विकास हो सके, सुख और शांति मिल सके, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि संग्रह वृत्ति के कारण हम इतने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, संरक्षण संवर्धन के इसमें ही सारा जीवन समाप्त हो जाता है, और हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं मिलता है। आज उत्तम त्याग धर्म है। त्याग हर व्यक्ति कर सकता है, आप करते हैं। हर व्यक्ति करता है त्याग, किस भावना से करता है? मैं आज एक रुपये का त्याग करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आज एक रुपये का त्याग करने से कल 100 रुपये का मुनाफा होने वाला है। आज मैं एक रुपये का त्याग करता हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कल 100 रुपये का लाभ होने वाला है। आज मैं एक बार का भोजन छोड़ता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि कल इसके बाद बहुत अच्छा सामान मिलने वाला है। मैं इस मनुष्य जीवन के इंद्रिय विषयों को छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जाकर के अपरिमित सांसारिक भोग की सामग्री प्राप्त होने वाली है। इस भावना से तो त्याग बहुत किया जाता है। ऐसा त्याग हर व्यक्ति कर रहा है। ये त्याग तो धम्मम भोग निमित्तम नदसु कम्म खयम निमित्तम, तो इस तरह का धर्म एकमात्र भोगों के लिए ये धर्म है। ये त्याग भोगों के लिए, त्याग भोग के लिए किया जा रहा है। भोग का त्याग नहीं किया जा रहा है, त्याग के लिए त्याग नहीं किया जा रहा है, भोगने के लिए त्याग किया जा रहा है। कर्म की क्षय के लिए त्याग नहीं किया जा रहा है। जो भी धर्म को धारण किया जा रहा है, एकमात्र भावना है कि आज इतना छोड़ूंगा तो कल इतना मिलेगा, इतने पाने की आकांक्षा है। किसी ने कहा है कि चोरी करें निहाई की, स्वीकार करते दान, और ऊपर चढ़ चढ़ देखते कितने दूर विमान। निहाई जानते हैं आप लोग, जो सराफी का काम करते उनके यहां रखी रहती इतनी बड़ी, जिस पर वो काम करते हैं, लोहे की होती है क्या उसको कुछ और बोलते हैं, जिस पर वो काम करते हैं आभूषण बनाते, निहाई कहते इतनी बड़ी तो चोरी कर ली। वो सुई के बराबर दान कर रहा है, कह रहा मैंने दान किया, और देख रहा है कि स्वर्गों के विमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमारे लिए लेने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये किस लिए त्याग किया जा रहा है? संग्रह की वृत्ति तो इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इतना सब कुछ चाहे कि तीनों लोगों की संपत्ति यदि हमारे घर आ जाए तो भी कम है, चक्रवर्ती का वैभव हमारे पास आ जाए तो भी कम है। और देते हैं तो इस भावना से दे रहे हैं, त्याग धर्म भी कर रहे हैं तो इस भावना से कर रहे हैं कि आज इतना दिया जाएगा तो कल इतना मिलेगा। थोड़ा सा देने पर बहुत मिलता है, इसलिए मैं त्याग करता हूं। ये उत्तम त्याग नहीं है। इसमें तो हमारा स्वार्थ निहित है, इसमें तो हमारी विषय वासनाओं की आकांक्षाएं निहित है। ये त्याग उत्तम त्याग नहीं है। ऐसा त्याग तो कोई भी कर लेता है भैया। इसे त्याग करने से व्यक्ति के लिए वह उपलब्धि नहीं हो सकती है जो वह उपलब्ध करना चाहता है। धम्मम भोग निमत्तम नदसु कम्म खयम निमत्तम, ये तुम्हारा जो धर्म, ये तुम्हारा जो त्याग, वह कर्मचय के लिए नहीं हो रहा है, भोगों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। जबकि हमारा ये धर्म कर्म के क्षय के लिए होना चाहिए। जिस किसी भी तरह से हमारी आत्मा के साथ लगे हुए एक कर्म की कलुषता, कर्म का मल, कर्म के रजकण दूर हो जाए, इस भावना से मैं आज त्याग करता हूं। ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए त्याग उत्तम त्याग नहीं माना जाता है। आप कितना भी त्याग कर दीजिए, मैं देखता हूं लोग लाखों हजारों रुपए करोड़ों रुपए दान कर देते हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवा लेते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, बहुत त्याग करते हैं, लेकिन एकमात्र उनके अंदर में एक दुर्भावना जीवित होती है अपने अहंकार की, ख्याति की, पूजा की, लाभ की, ये भावनाएं जीवित रहती हैं। एक पैसे का त्याग करते हैं तो कहते हैं माइक पे ऊपर आकर के मेरा नाम पुकारा जाए, मुझे माला पहना बनाई जाए, मेरी कोटी यहां लगाई जाए, मैंने इतना दान किया है। ये धर्म नहीं है, ये तो व्यापार हो गया आपका। मैं इतना देता हूं फिर इसके बदले में हमें इतना मिलना चाहिए। यही तो आप दुकान पर करते और क्या करते इससे ज्यादा। आप बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। मैं इतना दे रहा हूं इसलिए इसके बदले में इतना हमें ये मिलना चाहिए। मैं आज 100 रुपये देता हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी एक तस्वीर लगनी चाहिए, पेपर में नाम आना चाहिए। मतलब उसको दे करके हम बदले में कुछ पाना चाहते हैं। ये त्याग त्याग नहीं है, ये हमारा त्याग अहंकार से भरा हुआ त्याग है, ये हमारा त्याग लोभ से भरा हुआ त्याग है, ये हमारा त्याग छल कपट से भरा हुआ त्याग है। ये त्याग त्याग नहीं है, ये भोगों के लिए त्याग किया जा रहा है। आज इस त्याग की बात नहीं है, आज तो उत्तम त्याग की बात कही जा रही है। उत्तम त्याग क्या है? आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अपने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कहा, संयतस्य योग्यं ज्ञानादि दानं त्यागः। एक सूत्र लिखा उन्होंने, संयतस्य योग्यं ज्ञानादि दानं त्यागः। संयत के योग, जो संयमी है, जो धर्मात्मा है, जो साधर्मी है, उन्हीं की योग जो ज्ञान आदि का दान किया जा रहा है उसका नाम यहां पर त्याग है। यही उत्तम त्याग है, अन्यथा त्याग नहीं है। हम त्याग तो बहुत कर देते हैं, चाहे जिसके लिए चाहे जो दे देते हैं, लेकिन उस त्याग की बात नहीं। यहां जो एक पैसा भी दिया जा रहा है, एक वस्तु भी, एक पदार्थ भी यदि दिया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। उत्तम त्याग में त्याग का अर्थ है मूर्छा का विसर्जन, जो पदार्थों के साथ ये मेरेपन का संबंध बना होगा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस तरह की जो मूर्छा, ये गहल भाव अंदर में बैठा होगा है, इसका त्याग करना, इसका विसर्जन करना, इसका विमोचन करना, इसका नाम ही त्याग है। लेकिन हम मूर्छा का त्याग करना चाहते हैं, तो मूर्छा किससे हो रही है? पदार्थों से होती है। हमारे घर में 50 तरह की सामग्रियां हैं, सैकड़ों तरह की सामग्रियां रखी हुई हैं, लेकिन वो सामग्रियां तो उनके प्रति मेरापन है कि नहीं है? पदार्थ रहेगा तो अपनत्व जरूर होगा, ये रह नहीं सकता, ऐसा होगे बिना रहेगा नहीं। लोग भले ही कह रहे, कई लोग कह रहे थे, अब महाराज जी हमें तो कोई चल लेने देने नहीं है, अपन तो सबसे मुक्त हो गए, धन से, दुकान से, पैसा से, परिवार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मालूम चला कि सारी चाबियां तो उनकी जनेऊ में बंधी रहती हैं, पूरी चाबी छूटती नहीं। और यहां करके कहते हैं कि अब तो हम महाराज जी क्या करें, छोड़ना चाहते हैं, बच्चे छोड़ना नहीं देते हैं। वो कहते नहीं दादाजी, यहीं रखिए, रहिए आप तो। और बच्चों से पूछते कि क्यों ऐसा क्यों करते, तो कहते करें का दादाजी चाबी ही नहीं छोड़ते, हम क्या करें, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। हम कहते जरूर है कि अब हमें कोई लेना देना नहीं, हमने तो सब छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं छोड़ा। क्यों? अंदर में तो मूर्छा बैठी हुई है, अंदर में तो मेरापन बैठा हुआ है। ऐसा लगता है भले ही आप दुकान पर ना बैठो, लेकिन ये तो लगता है कि दुकान मेरी है, इतनी अच्छी दुकान है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मेरापन है। मेरेपन के त्याग के लिए वह मेरापन जिनसे होता है उन पदार्थों का भी त्याग करना होता है, इसका नाम ही यहां पर त्याग कहा गया है। अर्थात पदार्थों का भी विमोचन कर देना, उस संग्रह की वस्तुओं का भी त्याग कर देना, तभी वह मूर्छा का विमोचन संभव है, अन्यथा वह संभव नहीं हो सकता है। त्याग हमारी विरक्ति की उत्कृष्ट दशा का नाम है, त्याग हमारी विरक्ति की उत्कृष्ट दशा का नाम है। और दान आसक्ति भाव की कमी का नाम है। अंतर है दोनों में, त्याग में और दान में अंतर है, क्योंकि इत्याद विरक्ति से भरा हुआ होता है और दान में आसक्ति धीरे धीरे कम की जाती है, लोभ को धीरे धीरे कम किया जाता है, मूर्छा को धीरे धीरे तोड़ा जाता है। वह तोड़ने का जो उपक्रम, तोड़ने का जो प्रयास है, उसके तोड़ने के लिए हम पदार्थों का त्याग कर देते हैं, ये दान माना जाता है। लेकिन त्याग तो जो समूची मूर्छा का जहां विसर्जन कर दिया जाता है वह त्याग होता है, क्योंकि त्याग विरक्ति का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है और त्याग स्वाश्रित है, अपने आश्रित है, उद्दान पराश्रित है, दूसरे के आश्रित है। हम त्याग करना चाहें, आज हम चाहें कि मैं आज सारी मूर्छा को तोड़ता हूं, सारे पदार्थों को छोड़ता हूं, इसी वक्त छोड़ करके चले जाओ, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि कोई आकर के तुम्हारा संभाले तभी छोड़ करके जाओ। स्वास्थ्य है त्याग, हमारे अंदर से मूर्छा हटी, पदार्थ छूट गए, हम चले गए, अकेले हो गए, हमें किसी की दूसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्याग हमारा स्वास्थ्य है। लेकिन दान आप देना चाहते हो, किसे देना है? साधारणियों के लिए देना है, वो साधारणीय ना ले तो आप हमारे लिए आहार देने आते हो और आप तरह तरह का सामान बना करके लाते हो और आप देना चाहते हो और हम अंजलि बंद कर लेते हैं। अब बताइए, आप दान आपका स्वाश्रित या पराश्रित? यदि हम ना लें तो आप जबरदस्ती दे सकते क्या? आप त्याग करना चाहे तो हम नहीं लें। लोग आते हमारे यहां, महाराज जी एक पेन रख लीजिए, एक डायरी रख लीजिए, हम कहते हमें नहीं चाहेंगे, आप क्या जबरदस्ती रख सकते हैं? आप त्याग करना चाहते, दान करना चाहते, लेकिन दान आपका पराश्रित है। जब तक सामने वाला लेने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक आप दान नहीं कर सकते। इसलिए दान तो पराश्रित है लेकिन त्याग स्वाश्रित है। त्याग बहुत बड़ी चीज है, ये अपने ऊपर है। बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती को जीत लिया था, चक्रवर्ती तो अपने हाथ में कर लिया था, लेकिन चक्रवर्ती पद का भोग नहीं किया और इतना बैराग आया, मूर्छा हटी, फिर ये भी नहीं देखा कि सारा तीन छखंड का राज हम किसको सौंप के जा रहे हैं, कोई लेने वाला है कि नहीं, पहले ले ले फिर हम जाएं, इतना भी समय नहीं उनके पास, ऐसा छोड़ा और चले गए जंगल की तरफ। स्वाश्रित है, वो हमारे अधीन है। त्याग दूसरे की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन दान दूसरे की अपेक्षा करता है। वो देखता है कि सामने वाला लेने वाला तैयार है या नहीं, यदि तैयार है तो दान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। भैया यदि त्याग नहीं आ सकता आपके जीवन में तो कम से कम उस त्याग धर्म का जो सहयोगी है, जो साधन है, उस दान को तो हम अपने जीवन में अपना सकते कि नहीं अपना सकते? मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी गृहस्थी छोड़ करके हमारे साथ चले जाओ, कोई जाने वाला नहीं है भोपाल से, मुझे मालूम है 7 वर्ष हो गए यहां, चतुर्मास होते होते एक भी नहीं निकला यहां से, मुझे लगा कि इतने जबरदस्त लोग हैं यहां के, पक्के हैं, नियम के पक्के हैं, इन्होंने नियम ले रखा है, उनका एक नियम है कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, भोपाल वालों का नियम है कि मैं कोई नियम, इतना पक्का नियम लेकर के रखा। महाराज जी तुम 4 महीने का 4 साल तक यहां चिल्लाते रहो, हमारे ऊपर कोई असर होने वाला? क्योंकि हम इतने मजबूत पत्थर के बने हैं कि कुछ भी असर होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि त्याग आपके बस की बात नहीं है, त्याग वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। ध्यान रखना, जो कायर होता है वो त्याग से डरता है, जो वीर होता है, आत्मवीर होता है, वही व्यक्ति त्याग के मार्ग पर निकलता है। मुझे मालूम है कि आप नहीं कर सकते, त्याग मत करो, लेकिन दान तो कर सकते। आप अर्जन की तो प्रक्रिया कर रहे हो, संचय की प्रवृत्ति तो आपकी है, लेकिन दान की प्रवृत्ति नहीं है। यदि आप दान करते हो तो वही भी त्याग का एक अंश माना जाएगा, वही भी सम्यक त्याग माना जाएगा, वही भी त्याग धर्म माना जाएगा, क्योंकि उसके सहारे ही एक दिन आप पूरी मूर्छा को छोड़ सकते हो। ये दान नहीं कर सकते हैं, करना तो चाहेंगे, लेकिन दान देने किसने, दान किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं? आचार्य उमास्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा है, कल आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, कल महाराज जी ने पढ़ाया था, अनुग्रहार्थम स्वस्थापि सर्वोदानम, सातवें अध्याय का यह सूत्र है, अनुग्रहार्थम स्वस्थापि सर्वोदानम। कहते हैं कि उपकार की भावना के लिए, उपकार की भावना से जहां अपने धन वैभव का त्याग किया जाता है उसका नाम क्या है, क्या है? कोई नहीं बोल रहा है, करने नहीं जानते, त्याग। परोपकार की भावना से, उपकार की भावना से अपने संचित किए हुए धन का जहां त्याग किया जाता है उसका नाम दान है, उसका नाम दान है, ये है दान। दूसरे का थाली में से उठा करके एक गिलास दे देना, इसका नाम दान नहीं है। दान तो वो है कि जो हम देना चाहते हैं वो यदि दे दिया तो अपना दान माना जाता है। हमें अपने होंगे कमाए होंगे द्रव्य का विसर्जन करना, उसका नाम यहां पर दान माना गया है। और लेकिन एक शर्त है, आप देना तो बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन देने के साथ एक शर्त है, अनुग्रहार्थम। किस लिए आप दे रहे हैं? अनुग्रह के लिए। परोपकार, अपने और पर का जहां उपकार निहित हो, ऐसा पदार्थ का जहां त्याग किया जाए वो दान। अपना उपकार क्या? कहते हम जब दान देते हैं तो पुण्य का संचय होता है हमारे लिए, हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं, उतनी मूर्छा हमारी टूट जाती है, ये हमारे लिए लाभ है, ये हमारा उपकार हो गया, अपने ऊपर उपकार। और दूसरे पर क्या उपकार है? कहते यदि हम जो देते हैं उसको देने से सामने वाला धर्मात्मा अपने ज्ञान की चारित्र की वृद्धि करता है, साधना में वृद्धि करता है, ये दूसरे का उपकार है। ऐसे अपने और पर के उपकार की भावना से जो द्रव्य का त्याग किया जाता है उसका नाम ही यहां पर दान है। ये तो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य क्या कहें? आचार्य कुंभकर्ण महाराज ने तो इसे धर्म कहा है। दानम पूजा मुख्य श्रावक धर्म है, दान और पूजा इस श्रावक का धर्म है, यही दो धर्म है इसके। बाकी और धर्म आपके जीवन में हो या ना हो, लेकिन ये धर्म होना चाहिए। इसके लिए कुंभकर्ण महाराज ने पुण्य नहीं कहा, रणसार ग्रंथ में लिखा है, इसके लिए धर्म कहा, ये श्रावक क्या है? धर्म है। तो भैया इस धर्म को तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? ये आपका कर्तव्य, प्रमुख कर्तव्य है, इस धर्म को आपके लिए करना चाहिए। दान और पूजन, प्रतिदिन भगवान की पूजन करना चाहिए, वही त्याग का प्रतीक है। और प्रतिदिन दान करना चाहिए, यह भी त्याग का प्रतीक है। दान करते हैं किस तरह से करते हैं आप? आहार में, औषधि में, उपकरण में और अभयदान में, इस तरह चार प्रकार से आप दान देते हैं। लेकिन दान देने से पहले आपको विचार कर लेना है तीन चीजों का, क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। इन तीन चीजों पर विचार नहीं किया तो आपका दान जरूरी नहीं है कि सही सही हो जाए। क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्या दिया जा रहा है, ये विचार कर लेना कि जो हम दे रहे हैं इसके देने से सामने वाले के ध्यान में, अध्ययन में, स्वाध्याय में, तप में, चारित्र में, ज्ञान में वृद्धि हो रही है या नहीं। यदि वृद्धि हो रही है, इसके देने से वृद्धि होती है, तो हमारा वो देना ठीक ठीक है। और यदि हमारे इसको देने से उनके लिए विकल्प बनता है, आकुलता पैदा होती है, आत्मरोध ध्यान होता है, तो तुम्हारा वो देना हुआ द्रव्य ठीक नहीं है। ऐसा ही द्रव्य दो जो देने के बाद में हितकारी हो, परोपकार की भावना से देना चाहिए। यदि आपने ये विचार नहीं किया तो गलत हो जाएगा। महाराज जी के लिए क्या देना चाहिए? टीवी ला दो, पंखा ला दो, कूलर ला दो, फिर से डिपॉजिट कर दो 1,00,000 करोड़ की। यही तो करते हैं आप लोगों, क्या करते हैं?
बीत देना चाहते, क्योंकि आप स्वयं परिग्रह हैं, इसलिए निष्परिग्रह को भी परिग्रह बनाने की आपकी कोशिश है। आप उनको देखकर के अपरिग्रह बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें परिग्रह परिग्रह बनाने की कोशिश आपकी होती, इसलिए आप जो नहीं देना चाहेंगे वो देते हैं। वहां पर साधुओं के लिए क्या देना, आहार देना, भूख लगती है, बीमार हो तो औषध दे देना है, और अध्ययन करने के लिए शास्त्र भेंट कर देना है, ज्ञान के उपकरण पेन दे दो, डायरी दे दो, पर्याप्त है। और क्या चाहिए उपकरण के लिए, पिछली कमंडली चाहेंगे ये दे दो उनके लिए, और क्या दे सकते हैं आप उनके लिए बताएंगे, यही तो देना चाहेंगे। और उनके अभय के लिए उनकी भैया व्रत करना चाहेंगे, उनकी सुरक्षा का भैया व्रत का हमारा ध्यान होना चाहेंगे, इतना ही तो करना चाहिए साधु के लिए, इससे ज्यादा नहीं करना। इसलिए क्या दिया जा रहा है इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। जो द्रव्य हम दे रहे हैं उस द्रव्य के देने से साधु के ज्ञान ध्यान तप में वृद्धि होती है, परमात्मा के ज्ञान ध्यान तप में वृद्धि होती है, तो हम मानते कि हम पता नहीं आपको किस किस चीजों का दान होता है, कहीं नेत्र दान होता है, कहीं रक्त दान होता है, कहीं शरीर के अंगों का दान किया जा रहा है, किडनी दान की जा रही है, इसको दान कहा जा रहा है। जैन दर्शन कहता है कि ये दान नहीं है, भले ही आपकी परिभाषा में आपके शास्त्र में दान लिखा हो ग्रस्त जीवन में, लेकिन धर्म की किसी पुस्तक में इसके लिए दान नहीं लिखा है। इस सम्यक दान नहीं है, नेत्र का दान। आपने आंख दे दी किसी के लिए, पता नहीं क्या करेगा। आपने रक्त दे दिया किसी के लिए, पता नहीं क्या करेगा। आपने किडनी दे दी, आप क्या अपने शरीर के अंगों का दान होता नहीं है भैया, शरीर के अंगों का दान नहीं होता है, जो आपने इकट्ठा करके रखा है उसका दान करना चाहिए, पैसे का दान करना चाहिए, धन का दान करना चाहिए, आहार का दान, औषधि का दान, उपकरण का दान, अभय दान, ये सब करना चाहिए, लेकिन अंगों का दान दान नहीं बताया। हाँ, आप अपने परिवार में ऐसी स्थिति आती आप करते हैं तो इसको दान मत कहिए, आप ये कहिए कि हमारा उसके प्रति मोह है, इसलिए हम अपने शरीर के अंगों को देकर के भी उसे बचाना चाहते हैं, ये धर्म नहीं कहेंगे। आपके ग्रस्त जीवन का कर्तव्य है, ये मोह की वजह से इसलिए आप करते हैं, इसको करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे दान कहकर के मत दीजिए, इसका दुरुपयोग हो सकता है। पता नहीं किसके लिए क्या दिया, हमारे मरने के बाद हमारी आंख दूसरे को दे दी जाए, पता नहीं चोर डाकू लुटेरे किसके लिए आंख लगाई जाएगी वो, और वो क्या करेगा, क्या दिया।